अब विष्णु के कह देख पढ़ो इसमें, ये मैं सुनाना चाहता था कि विष्णु जी कह रहे हैं कि या तबाई आपन अपनी माँ दिखे से हैं, और या इसके मैं जब छोटा सा बालक था जब मैंने एक बार देखी थी ये भी याद, थोड़ी थोड़ी याद आस, ये देख लो ये शिव महा देवी भागवत, देवी देवी भागवत महापुराण, श्री मद देवी भागवत महापुराण से सुना रहा हूं, ये तीसरे सकंद में विष्णु के कह रहा है कि उन्होंने जब उन्होंने कहा कि भगवती हम सभी की आदि कारण है, यानी ये मारिय मां से इन्हें हमें हमें इन्होंने बनाया है, ये वही दिव्यंगना है जिसके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे, उस समय मैं बालक रूप में था, यानी छोटा सा था तब मुझे इसके दर्शन हुए थे, और फिर ये जब थोड़ी सी शोधिमान लग जाते हैं इनको बेहोश कर देते हैं, और ये काल उनको अचेत रखता है, इतने जवान हो जाते हैं इनको प्रवेश करता रहता अपनी शक्ति से, और फिर ये जहां कहा इनको पटक देश है, फिर ये चक्कर काटते अंडे जा मैं कहा था मैं कौन, फिर इनको इतना बेकूफ बना दे से इनके ब्याह कर दे है, और शादी होने पाछे फिर ये अपने ही इनमें इतने मगन हो जाते हैं, फिर इनको प्रभुता दे देता है तीन लोग के अंदर, तुम मालिक हो जो चाहे सो कर सकते हो, और प्रभुता जिसमें आएगी वो फिर किसी की नहीं सुनता, अपने आप में मगन हो जाता है, आगे की सुध रहती को ना। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए उन भगवती के पास चले, हम सभी अर्थात मैं विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे, जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी, और परंतु हम तीनों को स्त्री बना दिया, जब हम तीनों विमान से उतर कर वहां पहुंचे ना उनके द्वार पे, हम तीनों को लड़की बना दिया स्त्री बना दिया, हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली रूपवती युवती बन गए, अब हमारे आश्चर्य का पार न रहा, फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए, हम स्त्री रूप में थे, हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए, वहां देवी की हजारों सहेलियां विराजमान थी, नारद जी मैंने जो उद्भुत दृश्य वहां देखा वो बतलाता हूं, तुम ध्यान देकर सुना, भगवती बनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे, कमल के समान कोमल थे, नक्श सरस दर्पण का काम कर रहा था, उनके नाखों नो चमके थे कि उसमें ये सारे लोग दिखाई दे थे, उसमें मैं भी दिखा विष्णु भी दिखा और शिव जी भी दिखा और मधु कैटक भी दिखे, ये सब लोग दिखाई दिए, हमने मान लिया कि ये सारी इस ब्रह्मांड की रचने वाली यही माया है, यही हमारी मां है, इसका ये पूरा प्रमाण यही है। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया, मैं विष्णु और शंकर तीनों ने मान लिया कि ये देवी जगत जननी है, हम उन देवी की झांकी देखते रहे, झांकी माने नजारा, इतने में पूरे 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, स्त्री वेश में परिणित विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ की, भगवान विष्णु बोले प्रकृति देवी को नमस्कार हो, या प्रकृति शब्द याद रखना, प्रकृति देवी को नमस्कार हो जो कल्याण स्वरूपणी है, मनोरथ पूर्ण करने वाली है, यानी जैसे स्तुति की उनकी भगवान ने, तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली कर देती हो, मैं बारंबार तुम्हारे चरणों में मस्तक रखता हूँ, भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे प्रकट हुए उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के बालक हुए और मैं भी आपका ही बेटा हुआ, अर्थात ये तीनों देवताओं की माँ जगदम्बिका ये शेरा वाली प्रकृति देवी स्वयं प्रमाणित हो रही है देवी भागवत में, हे माता ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम्हें संसार की रचना करती हो, ब्रह्मा जी कहते हैं अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यौन स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने खुश होकर के कहा, और ये सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ, भगवती के चरणों में मस्तक झुका कर वे भी बैठ गए, मैं भी महामाया के जगदम्बिका के चरणों में गिर पड़ा, और मैंने उनसे कहा माता तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध स्वरूपा हो, भवानी तुम एक हो अध्या शक्ति हो, संपूर्ण स्वतंत्र वेदों में तुम्हारा ही तो ज्ञान कराया है, माता तुम्हारे संपर्क से मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में और विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल हैं, अर्थात आपके आशीर्वाद से ही हमारा काम बन रहा है, नहीं हमारे पल्ले कुछ नहीं है। ये उन्होंने अपनी शक्ति का अवलोकन, उस महाशक्ति का अवलोकन करके अपने शक्ति का अपना लेवल आप बता रहे हैं कि आप जो परम शक्ति हो आपके सामने हम कुछ भी नहीं, क्योंकि ये 8 भुजा की है और ये 4-4 भुजा के हैं और इनके पिता 1000 भुजा के हैं, ये 4 और स्पोर के या माता 8 और स्पोर की न सोच लो, और इनके पिता 1000 हॉर्स पावर के, इतनी यानी शक्ति से संबंधित है ये बातें। फिर क्या कहते हैं, और यदि आज तुम से अलग हो जाएं तो हम सब की शक्ति कुंठित हो जाए, कि यदि आप हम आपसे भिन्न हो जाएं तो हमारे पास पल्ला रहना कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी शक्ति हमारे अंदर संतरित है तो हम अपना कार्य में कुशलता पूर्वक लगे हुए हैं, लग सकते हैं। वेद कहते हैं एकम मेवा द्वितम ब्रह्म है, क्या ये आत्मा स्वरूपा तुम ही हो? ब्रह्मा बोला वेदों में लिखा है कि एक ब्रह्म है, क्या वो आप ही हो? अकबाई बात सुन, वह स्वरूप अथवा वह कोई दूसरा पुरुष है, मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए कृपा करो, किसी महापुरुष के प्रभाव से ही मुझे आपके चरणों की सेवा सुलभ हुई है, तुम स्त्री हो या पुरुष हो? यह रहस्य मुझे विषाद रूप से कृपा करके, ईश्वर रूप से कृपा करके बताने की कृपा करके बतलाओ। तो माया के बोली, ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार मैंने भगवती को जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी, देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मुझ में और इन ब्रह्म में किस कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है, जो जो वे हैं वो मैं हूं वही मैं हूं। अब दो स्थिति है यहाँ पर, जो वो हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही वो है, बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा जी इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूं, संपूर्ण देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से व्याख्यित हूं, मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूं, ये नाना प्रकार के नाम इसमें लिखे हैं कि ये मेरे ही रूप नाम है। देवताओं अब कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम शीघ्र पधारो, कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तो तब मैं आपके सामने आ जाऊंगी। अब माई क्या कहती है कि जब तुम्हारे काबू से कोई काम आ जाए बाहर तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे कार्य को सुलभ कर दूंगी। अर्थात ये तीनों देवता भी पूर्ण परमात्मा नहीं है, पूर्ण शक्ति युक्त नहीं है, ये देवी भागवत भी प्रमाणित करती है और कबीर साहब भी प्रमाणित करते हैं। देवताओं मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करना करते रहना चाहिए। अब ये और बताना चाहूं था मैं इसमें, अब माई के कह के मेरा और सनातन भगवान यानी ब्रह्म का तुम्हें सदा ध्यान रखना चाहिए। हो गए दो माता न्यारी निरंजन न्यारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश न्यारे, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में तीन रूपों में ये निरंजन काल वहां रहता है, वो ये इतना गजबदार काल में इस भोली भाली जीवात्माओं को यहाँ फंसाए रखने के लिए, सतमार्ग तक ना पहुंचने के लिए ये इतना उलझेड़ा उलझाकर डाल रखा है। देवताओं मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए, हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। यदि भाई वह माया कहती है सेरा वाली जगदम्बिका, यदि तुम मेरा ध्यान रखोगे ना और इस सनातन भगवान थारे पिताजी का, तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी कोई संदेह नहीं है, यानी तुम्हारे काम पूर्ण रूप से सर जाएंगे। अब इसी को मैं आपको गीता जी में प्रमाणित करना चाहता हूं, 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से लेकर और 5 तक का वर्णन आपको सुनाता हूं, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये गीता जी मेरे पास रखी है और दो लेखकों की नारी नारी टीका है, ये तो है जय दयाल गोविंद का के द्वारा टीका किया हुआ, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और दूसरी है ये बड़ी, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और श्री राम सुखदास जो की गीता प्रेस गोरखपुर के जो है संस्थापक भी हैं, बहुत विद्वान पुरुष हैं, बहुत वृद्ध वयोवृद्ध महात्मा हैं, इनके द्वारा टीका किया हुआ। ऐसे नहीं कि वैसे वैसे हमने कई शास्त्रों को पढ़ा, सभी का टीका न्यारा न्यारा देखा, लेकिन सरलार सभी का एक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, टीका बिल्कुल ठीक है इनका। इसमें लिखा है अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि हे अर्जुन, वह श्रेष्ठ अति उत्तम उस परम ज्ञान को फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम माने आगे की सिद्धि माने लक्ष्य को प्राप्त हो गए। कैसे? अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 1, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब यहां के कहना चाहता है कि जिनको ये भेद बेरा पट गया कि यहां काल कुकर है और ये तीनों देवता कैसे हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना को छोड़ देते हैं। आपने देखा ना कि साधक ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करते, वो केवल ब्रह्म उपासना करते हैं। उनको ये पता लग जाता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मरण में है, ये पार नहीं होंगे, और वो सिद्ध पुरुष पार होने के लिए उस निरंजन की साधना करते हैं, क्योंकि महास्वर्ग है उसका नाम, उसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं। वहां जो पहुंच गए उनका कई कल्पों के बाद अंत होता है, मरते वो भी हैं, वो कई कल्पों के बाद मरते हैं, और ये कल्प में कई कई बार मर लेते हैं। जैसे हम पृथ्वी मंडल पर इस एक ब्रह्मा मरेगा इतने हम तो असंख्यों बार बिना गिनती बार मर लेंगे, लेकिन वो वहां उनकी स्थिति अच्छी है देवताओं की, उनके दिव्य वृक्ष बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन उस ब्रह्म लोक की तुलना में ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मारे कितने करा कितने वो मर लेंगे, लेकिन मरेंगे वो ब्रह्म लोक वाले भी एक दिन, अंत में उनका भी आओगा। तो ये क्या कहते हैं कि ये जो इस मैं जो बताना चाहता हूं इसका जिसने ज्ञान हो गया वो यहां से ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से भी वंचित हो जाएगा, यानी ऊपर की साधना करेगा, और उसकी जब अपना हम ये ज्ञान हो जाएगा कि काल निरंजन कौन है, तो फिर आप उस ब्रह्म लोक में भी त्याग दोगे, आप सतलोक की साधना में आरूढ़ हो जाओगे, जहां जाने के बाद कभी मरण नहीं होता। अध्याय नंबर 2 ना श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 14 का गीता जी में इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सद मत को प्राप्त हो गए हैं, सद्धर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में व्यवस्थित नहीं होते। कौन? जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी साधना त्याग दी और मेरी साधना यानी काल की कर ली, ब्रह्म की, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कई बार मर लेंगे, वो फिर भी नहीं मरेंगे। लेकिन जब मैंने बताया कि कई अरबों कल्पों के बाद वो भी अंत होगा, लेकिन यहां के जन्म मरण से यहां की जो हमारी स्थिति से तो देवता लोग अच्छे, देवताओं से वो महास्वर्ग यानी ब्रह्म लोक वाले अच्छे, लेकिन अच्छे वो भी कोई ना, वो भी मरने में आएंगे। अंत में अच्छे कौन है? सतलोक में जहां से हम आए थे वहां अपना कभी मरण नहीं होगा, वहां हम सदा सुखी रहेंगे, कोई काम नहीं है वहां पर, वहां पर परम पिता परमात्मा सब पुरुष रिश्ता है, सभी प्राणी वहां मत अपने ईश्वर के ध्यान में मगन रहते हैं, और वहां अपना परिवार बनेगा, फिर वो मरण कभी नहीं होगा, और साधना बिल्कुल आसान है, एक नाम मिलता है और उस नाम का जाप करते रहिए और अपना परमात्मा का ध्यान रखिए, परम पिता का, और साथ में अपने बच्चों का पालन पोषण भी करते रहिए। अब आगे अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4 और 5 में ये ध्यान से सुनने का। अध्याय नंबर 3 में लिखा है कि हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति यानी प्रधान प्रकृति, आपने शिव महापुराण में देवी भागवत में ये सुना होगा कि इसी को देवी कहते हैं, इसी को प्रकृति देवी कहते हैं, इसी को जगदम्बिका कहते हैं, इसको अष्टंगी कहते हैं, इसी को प्रकृति देवी कहते हैं। यहाँ काल निरंजन गीता में स्वयं कृष्ण जी के शरीर में बढ़कर उस प्रवेश करके बोल रहा है, क्या कहता है कि हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, इससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। चौथे श्लोक में कहा है चौदहवें अध्याय का कि हे अर्जुन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। ये गीता जी के तीसरे और चौथे श्लोक में चौदहवें अध्याय का ये मैंने आपको प्रमाण दिया। ये काल निरंजन कहता है कि यह प्रकृति तो सबकी माँ है और मैं इन सबका पिता हूं और इससे ये उत्पत्ति यहाँ की होती है। पांचवें श्लोक में चौदहवें अध्याय का लिखा है, हे माँ प्रभो ना हे माँ भाव यानी अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले, प्रकृति शेरा वाली से पैदा होने वाले कौन ब्रह्मा विष्णु महेश, सतगुण रजगुण और तम, ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को देही में बांधे रहते हैं, इस शरीर में उलझा कर रखते हैं, इनको फंसाए रखते हैं, इनको पार नहीं होने देते। अब बताओ गीता जी कहने लग रही, ये गीता जी बोल रही है, क्या कहते हैं कि अर्जुन, इस प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा और सतगुण विष्णु तमगुण शंकर जी, ये इस भोरी भारी जीवात्मा को इस शरीर में फंसा कर रखते हैं, कभी गधी बना देते हैं, कभी कुतिया बना देते हैं, कभी कुत्ते बना देते हैं और कभी गंदी नाली के कीड़े बना देते हैं, ये इस जीव को यहाँ से निकल नहीं देते। ये खुद भगवान ब्रह्म कह रहा है और इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं कि ये तुम्हें दुखदाई है। अब सुनो इस बात को ध्यान से, गरीबदास जी कहते हैं, गरीब तीनों देवा काल हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि ये तीनों देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बुल्ले चूके समझियो और सबका हूं आदेश, सबका हूं उपदेश, को भूल चूक रह रही हो ना किसी का वो भी समझ लेना, ये सबको उपदेश दे रहा हूं। तीनों देवा काल हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चूके समझियो सबका हूं उपदेश, यही कबीर साहब कहते हैं कि तुम इन तीनों देवताओं में इन्हीं में उलझे हुए रहते हो और ये तुमने पार नहीं होने देते। आगे बताते हैं, कहना चाहते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये काल नरेंद्र और माया इन भोली भाली आत्माओं को इस काल के जाल में अटकाए रखते हैं। कहते हैं बंदी छोड़, अंत कोट ब्रह्मा बहे अंत, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय, धर्मराय काल निरंजन, ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए। अब क्या कहते हैं कि इन पांचों ने मिलकर ये परपंच बना रखा है, जिस किसने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, शेरा वाली ने, प्रकृति देवी ने और काल निरंजन ने, इन सब ने ये परपंच बना रखा है, वाणी हमरी लहिए, हम जो विचार व्यक्त कर रहे हैं इनको ध्यान पूर्वक समझ लेना, सुन लेना कि हम क्या कहना चाहते हैं। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जगन जगन हम आन छुटाए, इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम अगर अमर है अस्थिर धामम, हमारा बंदी छोड़ नाम है, कबीर साहब कहते हैं बंदी छोड़ कौन है, जो काल की बंधन से छुड़वा दे और सतलोक ले जावे, अमर करो सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ की परिभाषा एक ही दोहे में बता दी, अमर करो इस काल के जाल पर छुटवा के, यहां अमर कोई नहीं है, ये स्वयं काल निरंजन अमर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश अमर नहीं है, अमर करो सतलोक पठाऊं यानी इस लोक में ले जाऊं जहां आपका कभी मरण नहीं होगा, ताते बंदी छोड़ कहा हूं, इस काल के बंध से छुड़वा कर, आपको सतलोक ले जाता हूं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। बंदी छोड़ हमारा नाम अगर अमर है अस्थिर अगर अमर स्थिर, अगर जो कति कभी ना जले खत्म ना हुए, अमर जो कभी नष्ट ना हुए, अस्थिर स्थिर माने पूरा सथाई कभी डगमग ना हुए, वो सतलोक हमारा थाम माने स्थान है। अगर अमर है अस्थिर थाम तो ध्यान पूर्वक सुनोगे जब बात बनेगी कि कबीर साहब ने सच्चाई का पूर्ण रूप से वर्णन किया है, और हम इनको क्योंकि कबीर साहब को प्रथम तो हम कोई विद्वान पुरुष ही नहीं मानते थे हैं, और फिर इनको केवल एक संत की संज्ञा देकर हमने अपनी कलम तोड़ रखी थी। ये जो भगत थे, एक कवि थे, ये तो बस ऐसे ही गाने गुने गाते थे, लेकिन ये परमात्मा थे, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक थे। इनकी महिमा से परिचित नहीं हो पाने के कारण हम अपने आप में ही अपनी नादानी के कारण ब्रह्माविष्णु महेश को तो हमने भगवान मान लिया, और परमात्मा को परमात्मा की संज्ञा नहीं ले पाने के कारण हम फिर भरेंगे और फिर गटेंगे। और जिसका भयंकर प्रणाम ये निकला कि हमने अपने लाल को भूल के और कौड़ियों की जो है जोड़ी बर रखी थी, तो क्या कहते हैं बंदी छोड़ माया आज निरंजन भाई अपने जाए आप खाई। ये आदि निरंजन, ये काल, ये माया है, इसने ही ये सारा जाल फैला रखा है। माया आज निरंजन भाई अपने जाए आप खाई, धर्मा भी सुन महेश्वर चेला ओहम सोहम का है खेला, शिखर सुन में धर्म अन्यायी जिन शक्ति दायण महल पठाई। ये सुनो बंदी छोड़ की वाणी, ये गरीब दास कबीर साहब एक ही शक्ति है, जैसे रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार आए थे, ऐसे ही कबीर साहब और गरीब दास जी उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष के पूर्ण ब्रह्म के अवतार आए थे। उन्होंने एक जैसा ही ज्ञान दिया है। गरीबदास जी महाराज की वाणी बताती है, शिखर सुन में धर्म अन्यायी जिन शक्ति दायण मैल पठाई। शिखर सुन में, शिखर माने चोटी में, यानी बिल्कुल आखिर में, किस में, ब्रह्मांड के अंतिम लोक में ये काल निरंजन रहता है। उसने इस अपनी पत्नी शक्ति दायन बताई इसको यहाँ पर, क्योंकि ये मजबूर है बेचारी, इसकी ड्यूटी ऐसी दे रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ये सारा काम करवा रही है। ब्रह्मा शरीर बनाता है, विष्णु पालता, सिर भी मार देता है, और इनके पिता निरंजन 100,000 जीवों को रोज खाते हैं, 100,000 जीवों का रोज आहार करते हैं वो। यहाँ आप देखते हो कोई एक्सीडेंट में, जैसे गुजरात के अंदर के जुलम हो गया, वो बहन और भाई अपने बच्चों के छाती से लगाए थे, अपने आनंद मंगन से बैठे हुए थे, 1 मिनट के बाद अनरस हो गया, हजारों व्यक्तियों की जान गई, उनके परिवार गए, उनकी ज्यादा संपत्ति की जिन पर वो आश्रित हुए बैठे थे। ये काल ऐसे झटके देता है। अब पीछे दिया था इसने उड़ीसा के अंदर, हजारों बहन भाई वहां समाप्त हो गए, कभी दूसरे देशों में, कभी किसी कारण से एक्सीडेंट से, नेचुरल डेथ से, बीमारी से, 100,000 जीवों की, मनुष्य शरीरधारियों की अपनी पूरा कोटा एक शाम को कर लेता है। और इनको फिर इन निरंजन के लोक में कपत शिला है, शिला माने पत्थर, अपने आप गर्म रहती है वो, और उसके ऊपर भून कर उसमें से वासना निकालकर उन जीवों के जो उनसे मल निकलता है उसको ये खाता है। जीव मरता नहीं। कई भाई भ्रम डाल में पड़ जाते हैं कि जीव तो अमर है, फिर ये शरीर यहां रह जाता है, खाता क्या है? ये शरीर खोखा है, ये स्थूल शरीर है, मिट्टी से बना हुआ, 5 तत्व से, इसके माध्यम इसके अंदर सूक्ष्म शरीर और है, एक कारण शरीर और है, उस कारण शरीर के अंदर महाकारण कवल्य, उस फिर वो जीव आत्मा है। इसके ऊपर इतने आवरण चढ़ा रखे, ये ऊपर खोखा चढ़ा हुआ,
जैसे बादाम की गिरी जो न्यारी होती है, ऊपर कवर न्यारा होता है, उस कवर से वो गिरी बनती है, इस कवर से ये खट्टे मीठे शराब सुल्फा बीड़ी तमाखू गंदे व्यसन गंदी नजरें गंदे गाने ये जितने भी आनंद लेता है ये मन, ये सारा इस शरीर के अंदर समावेश कर जाता है। इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में समावेश कर जाता है। सूक्ष्म शरीर के ऊपर का उसका लेपन बन जाता है और वो लेपन इतने गर्म करने से उतरता है कि ये जीव मूर्छित हो जाता है। सूक्ष्म शरीर में ये मूर्छित बड़ी मुश्किल से होता है। जब उस तपशिला पे 100,000 जीवों को डाल देता है सूक्ष्म शरीर में, और फिर ये तरस तरस कर गर्म होकर उसमें से जो 80-90 वर्ष जो हम जितने भी व्यसन नमकीन चटपटे मीठे खट्टे खाते हैं, बीड़ी शराब मांस तमाखू जो भी प्रयोग करते हैं, उनका एक तत्व उसके ऊपर जमा होता है, फिर वो धीरे धीरे छोड़ देते हैं। 100,000 में से दो फिर और सूक्ष्म शरीर का और ज्यादा आनंदित होता है। जैसे पहले गन्ने का रस होता है वो भी मीठा होता है, फिर उससे क्या बनती है, बूरा बनती है यानी शुगर बनती है, शुगर उससे भी बढ़िया मीठी होती है, शुगर से फिर आगे कंद बनाया जाता है वो उससे भी अच्छा मीठा बन जाता है, ऐसे ही और सूक्ष्म हो जाता है तो और आनंदित होता है। तो उस 100,000 जीवों को ये काल निरंजन भून के खाता है। और यहाँ पर हम अपना बेटा और बेटी समझते हैं, अपने बहन और भाई समझते हैं, और टक्कर मार मार करो कि हमारा भाई मर गया, हमारी बहन मर गई, और बाकी सबर कर लेते। तो कबीर साहब कहते हैं, ना जानो अब ये सोचो तो कभी ये ऐसा क्यों हो रहा है, जिसको भगवान कहे वही खा रहा है। गीता में स्वयं कह रहा है कि मैं सबको खाऊंगा, एक ने ना छोड़ो, और इसकी तुम पूजा करे तो कैसे बचेगा आपको। उस भगवान की पूजा करो जो काल से बाहर है, और भगवान कभी मारता नहीं, भगवान कभी नहीं मारेगा, जो मारता वो भगवान नहीं। तो निर्दयी है जो कुत्ते और कुतिया बना रहे और सूर सूरी बनाकर गोबर खिला रहे, उसको तुम भगवान मान रहे। फिर कहते तो अपने कर्म है, कर्म किसके लिए की, अब मैं मर जाऊं इसके लिए कर्म कर रहा था, ये करवाए जा रहे थे बाई फोर्स। तो भाई ये सब काल निरंजन बता रहा है। कबीर साहब की शरण आने के बाद ये निष्क्रिय हो जाता है, ये फिर असर नहीं करता उस धन के ऊपर, इसके ऊपर कोई असर नहीं रहता उसका। इसने इसके लिखे हुए गंदे लेखों को भी कबीर साहब काट देता है, इनके गंदे कर्मों को काट देता
है। सर प्रॉब्लम हो जाओ तुम लोगों के, कैसे कह रहे हैं भगवान को, और भगवान कह लग रहा आपका गीता में के तीनों गुण जीवन जा रखे हैं, उड़ाए रखते हैं तीनों गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। ना पढ़कर देखो दोबारा उस गीता जी को, खोखा पुर में जीव बुलाए सपना विश्व वैकुंठ बनाए। ये खोखा पुर है, खोखा माने ऊपर तो बढ़िया दिखा अंदर कुछ नहीं पावे कवर, ये कवर कितना बढ़िया देख, ऊपर तो इतनी पालिश कर रखी क्या सुंदर बना रखा, अंदर इसमें क्या डंगा ठोक रखा, हार्ड मांस इसमें फिर थूक दस्ता ढीठ मूत्र आंतों के लोथड़े गिर रखे। कोई कुत्ता आपने देखा हो ना एक्सीडेंट में, उसका फटा हुआ शरीर उसकी तरफ देखा नहीं जाता अपने से, और इस नाम लिए करने लाग रहे सारे रंगे ने, ऊपर केस उतरा खोखा बना रखा, ये खोखा है ऊपर तो बढ़िया दिखे भीतर कुछ हो जाए। खोखा पर में जीव बुलाए सपना विस्त वैकुंठ बनाए, ये विस्त जिसने स्वर्ग पे ये स्वप्न बना रखा है, यहाँ बलो रखे फिर इस स्वर्ग में थोड़े दिन महाराज जी रखे, फिर नरक में ठोक दे, फिर 84 लाख के कोल्लू में पड़े पाचा जी आप पर धक्के खाएगा। मनुष्य शरीर में जब ये जीव आता है, जब इस काल निरंजन का आग लग जाती है, कहीं इसको भक्ति ना मिल जाए, परमात्मा एक मानते हो, परमात्मा एक मानते हो कि भगवान एक है, उसका शास्त्र एक चाहिए था, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी एक ही चाहिए थी, ये इतने और जेड़े किसने कर दिए, इस काल भगवान निरंजन ने, इस ब्रह्म ने, कि कोई सतमार्ग पर ना लग जा, कोई भक्ति ना कर ले। ऋषिजन भक्ति करते थे, जैसे विश्वामित्र भक्ति कर रहा था, एक उर्वशी भेज दी, वो वहां पहुंच गई, उसके साथ शादी कर ली, एक लड़की होगी तो छोड़कर भाग गई। अब फिर मारा माथे माथ ऋषि उसकी वहां तपस्या की, जब तपस्या कर रहा था करने क्यों ना दिया उसको, क्यों पंगे पाए उस बेचारे की जान को, क्योंकि ये भक्ति करने ना दे, और करे तो गलत कर लो, मंदिर में चले जाओ, तीर्थों पर चक्कर काटने जाओ, जो गीता में लिख रखा ऐसे मत करो, गीता जी में लिख रखा ऐसे मत करो, और कर लो श्राद्ध निकाल लो, और गीता जी में मना कर रखा पत्र मत पूजो, देवी देवताओं की पूजा मत करो, भूतों की पूजा मत करो, और ये सब के सब कर रहे हो, और गीता जी ने सिर पर रखकर घूमते हैं, गीता जैसा ज्ञान नहीं, और मानना कति नहीं, करना का उल्टी साधना है, क्योंकि ये काल हर इंसान के अंदर विद्यमान है, ये मन रूप में ये निरंजन विद्यमान है, ये जीव को भ्रमित रखता है। खोखा पूर्ण जीव भुलाए, स्वप्न भक्त स्वप्न विश्व कुंड बनाए, ये अरहट का कुआ लोई यागल बंजा है सबको ही, रहट का कुआ, पहले एक सिंचाई का साधन एक कुआ होता था वेल, और उसमें एक चैन सी होती थी, बकट लगी हुई होती थी, उसमें एक बैलों से उसको चलाया जाता था कोहलू की तरह, तो नीचे से पानी वो बकट चैन के ऊपर से वो बाल्टियां भर के आती थी और बाहर खाली हो जाती थी, नीचे से फिर भर लाती थी, फिर खाली हो जाती थी। अब यहाँ पर की बता रखा है कि यहाँ पर पुण्य कमाओ और स्वर्ग में खाली कराओ और फिर नरक में जाओ, फिर स्वर्ग में यहाँ आओ पुण्य कमाओ वहां खाली कराओ, 84 लाख के चक्कर काटो, ये रहट का कुआ लोई, रहट हर हट जिसे कहते, और या गड़ बन जा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हट डोर बंधे कोई वारा, ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी असंख्यों बार मर लिए, असंख्यों बार पैदा हो लिए, 84 लाख जोनियों में जा लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, दीज आर द पोस्ट, ये एक पदवी है, और इनके जो उसके इक्विवेलेंट यानी अच्छी आत्मा का जो हंस होता है उनके वो काल निरंजन अपने अपनी पत्नी के माध्यम से और उन अपने बच्चों के रूप में उनको पैदा करता है, उन उच्च आत्माओं को जो अच्छी आत्माएं हैं, जो परमात्माएं हैं, परम माने श्रेष्ठ आत्माएं, परमात्मा की परिभाषा क्या है, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा, उच्ची आत्माएं ब्रह्मा विष्णु महेश इस तीन लोक में सबसे उत्तम आत्माएं हैं, इसलिए इनको इस पोस्ट पर नियुक्त किया, जब ये अपनी पूरी अवधि पूरी कर लेंगे ये 84 लाख दुनिया में आत्मा जाएंगी, क्योंकि अब ये भक्ति नहीं कर रहे, अब तो मौज मार रहे हैं, क्योंकि अच्छे ब्याह हो रहे और इनकी प्रभुता पूरी से देवी देवता जोड़े खड़े रहे, अच्छी उर्वशी नाते इनके स्वर्ग में, ये भक्ति नहीं करते, और करते हैं तो कालताए की, एक बार 84 के चक्कर में जाएंगे और फिर ये आओगे उभर कर, फिर इनका नंबर कहीं आओगा वो दूसरी बात है, ऐसे ही फिर जो उच्च आत्मा है उनका नंबर आ जाएगा, ये पोस्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये शंकर, ये पोस्ट यहाँ पर जाके कोई मिनिस्टर बन जा, कोई डिफेंस मिनिस्टर बन जा, ऐसे अरब अनिल इंद्र कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हर डोर बंधे कई बारा, गीता जी में सुन कृष्ण जी के मुखारविंद से और काल बोल रहा है कि अर्जुन तेरे मेरे असंख्य जन्म हो लिए, तेरा याद को ना मुझे ज्ञान है, अर्थात भगवान भी जन्म मरण में रहा है, शेष महेश गणेश्वर ताही हर हर डोर बंधे कसब आही, ये शेष महेश और गणेश ये सारे जन्म मरण में है और ये जो है ऐसे चलते रहते, शुक्राधिक ब्रह्मा अधिक देवा हर डोर बंधे सब खेवा, कोटि करता फिरता देखा हर डोर कहो सुन देखा, चतुर्भुजी भगवान कहा में हर डोर बंधे सब आवे, ये चतुर्भुजी भगवान कहा में हर डोर बंधे सब आवे, ये चतुर्भुजी भगवान जिनको तुम कहती हो, यो है खोखा पुर का कुआ यम पड़ा सुन सहमुआ, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योत निरंजन भया ज्योत स्वरूपी भया निरंजन मैं ही करता भाई, अब यहाँ पर सारे अपनी अपनी डकली, अपना अपना राग, अपनी प्रभुता बनाए बैठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछ लो, वो नो कह मारे बड्डा को रुको ना, हम यू कर जा, हम यू कर जा, हम यू कर जा, हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ, उनकी जितनी उनके जो अधिकार क्षेत्र है उतने में वो फुल फ्लैज है। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री फुल फ्लैज होता है, उसमें पूर्ण है वो, लेकिन राज्य से बाहर वो कुछ नहीं है। ऐसे ये तीन लोक के पूर्ण प्रभु हैं। इनके कार्य क्षेत्र, इनके अधिकार क्षेत्र भगवान निरंजन के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते, ये कर्म के दंड को नहीं काट सकते, किए हुए कर्म का भोग दे सकते हैं, उसमें फेर बदल नहीं कर सकते। नासा घटे ना तिल बढ़े, विदना लिखे जो लेख, भाई सच्चा सतगुर मेट के ऊपर मार दीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने कर्म को भी नहीं काट सकते, अपने कर्म को नहीं काट सकते, उन्हें भोगना पड़ेगा। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने बाली मारा था सुग्रीव का भाई त्रेता युग में, उसका बदला भी द्वापर युग में स्वयं कृष्ण बनकर आए, वही भगवान विष्णु, और तीर से उनकी हत्या की गई, उसी आत्मा जो कि बालिया था, बाली का वही आत्मा आकर के एक पारदी शिकारी बना था। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जब ये अपने कर्म को नहीं काट पाए, अपना कर्म भोगना पड़ा, तो आप इनकी आराधना साधना करके कर्म दंड तो कटवा नहीं सकते, वो भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिया कि जैसे कर्म प्राणी करेगा भोगने पड़ेंगे। ये गीता जी का मूल ज्ञान है। जैसे का मतलब है बुरे भी और अच्छे। और बंदी छोड़ कहता है कि मासा घटे ना चल बधे, विदना लिखे जो लेख, ये विदना कौन? निरंजन। निरंजन के द्वारा एक धर्मराज बनाया गया है, नियुक्त किया गया है सुप्रीम जज मजिस्ट्रेट, उसके आदेश से वो सबके कर्मों के आधार पर दंड नियुक्त करता है। उसको ना ब्रह्मा काट सके, ना विष्णु काट सके, ना शिव जी काट सके, उसको कबीर भगवान काट सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति और हाई कोर्ट के फैसले को भी चेंज कर सकता है, उसको कोई चैलेंज नहीं है। फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है, अन्य सजाएं तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल, उसको कोई चैलेंज नहीं है, जितने चाहे कर सकता है, अपील भी नहीं है उनके सामने। तो इसलिए उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। आज भी सारी जेल को खाली कर सकता है एक आदेश में, सभी जेलों को सभी फैसले फेल कर सकता है अगर चाहे तो। वो सुप्रीम पावर है, राष्ट्रपति सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्री। ऐसे ही कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा है। वो गरीब जमजोर राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। ये कर्म के दंड को, कर्म के लेख को मिटा देते हैं, अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ये पूर्ण परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लिए। पीर पीर पगंबर कुतुब ओलिया सर नर मुनि जन ज्ञानी, एता को तो राना पाया जम को बंधे पुरानी। ध्यान से सुनना कबीर भगवान की वाणी गरीबदासियों की। पीर पगंबर कुतुब ओलिया, ये है तो साधक ही, पर अपनी भाषा भिन्नता के कारण पीर उत्तम पैगंबर, पैगंबर कहते हैं अवतार, ये ईसाई लोग मुसलमान भाई उनको पैगंबर कहते हैं, हम अवतार कहते हैं। पीर यानी गुरु, पीर कौन से गुरु? जो केवल निरंजन तक की जानकारी जानते हैं। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुरनर मुनिजन ज्ञानी, एक कुतुब रा नहीं पाया ने जम का बंधे प्राणी। जम माने काल, एकता को तो रानी पाया ये काल का बंधे प्राणी। आपने सुना था, कल बता रहे थे कि 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन देख रहा है कि भगवान आप तो देवताओं में खा रहे हो, के गुणगान करें, ये सुनने की बात है। उस निरंजन की तो साधना कर रहे काल भगवान की, और वही उनको खा रहा है, फिर उनकी माफी भी हो जाए, माफी भी नहीं है। ये ताको तो राना पारा जम को बंधे प्राणी, ये जीव आत्माएं बेशक वो देवता बन रहे थे, लेकिन उस काल की साधना करके और काल के ही कुत्ते से उसी के उसमें जाल में फंसे हुए। धर्मराय की धूमा धामी जम पर जंग चलाऊं, जरा को तो जान न दूंगा बांध अदल घर लाऊं। काल अकाल तो हूं को मोसु महाकाल शर्मूंगा, मैं तो पक्त हजूरी हुक्मी चोर खोज को ढूंढो। मुल्ला माया मग में बैठी हिंसा चुन चुन खाई, ये जो स्वरूप भी भया निरंजन मुड़ करता भाई। ब्रह्मा विष्णु को वेद कहते हैं ये भगवान, और निरंजन कहता मैं भगवान, जो बोला वो भी नहीं होगा मैं भगवान। शेष 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, शेष 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, एकता मजम का तलमाना चलियो पुरुष किशोरी। शेष 88 दीप मुनीश्वर 88,000 खेड़े बना रखे काल में, उसमें ऋषियों को न्यारे न्यारे स्थान दे रखे 88,000 ऋषियों को, अरुणा वो मौज मार रहे थे, उनकी वहां शादी हो रही थी, और जोड़ा के ठाठ हो रहे हैं। मैं फिर गधे बनाओगा तुमने, ये थोड़े दिन रात थोड़े दिन की सोच में देखे। यह कहते हैं शेष 88 दीप मुनीश्वर बंधे मुल्ला डोरी, मुल्ला यानी काल की डोर का बंध रहे हैं, माया की डोरी का बंध रहे हैं। तमजम का तलबाना चलियो पुरुष किशोरी, इन सब में काल का तलबाना माने हुक्म चलता है, और समय आने पर सबको 84,00,000 दुनिया में जाना पड़ेगा। इसलिए उस परमात्मा सतपुरुष की, उस भगवान की साधना करो, जो गीता जी ने लिखा कि उसकी साधना करने से पूर्व जन्म मरण नहीं होगा। हम तो बंदी छोड़ कहां वहां धर्म राय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा बाणी हमरी अखबे। नौलख पटन ऊपर खेलू सादर रेको रोको, वोट कटक सब काटो हंस पठाऊ मोको। शोभा भवन गवन है मेरा जनथल में सरभंगी, खालक खलक खलक में सो खालक अवगत असल अभंगी। अगर अनिल चक्कर है मेरा जित से हम चल आए, पांचों पर परवाना मेरा बंद छुटावन भाई। अब अपनी शक्ति का प्रमाण देते हुए कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, अगर अलील चक्र है मेरा जित से हम चल आए, हम उस सतलोक से चल कर आए हैं जहां पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन फिर नहीं जा सकते, और इन पांचों पर परवाना मेरा, इन ब्रह्मा विष्णु महेश माया और गंगा के ऊपर मेरा हुक्म चलता है, और हम बंद छुटावन आए, हम तुम्हारे को इस काल से निकाल कर सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। या कुत्ते गधे नहीं बनने देंगे आपको, जिन्होंने हमारा नाम ले लिया उनका जन्म होगा तो मनुष्य का होगा, स्त्री या पुरुष का जब तक यहाँ से पार नहीं होगे, चाहे 2 जन्म लगे चाहे 100 जन्म लगे, आपको इन गंदी योनिया में कबीर साहब नहीं जाने देगा। अब यहाँ देखो किसी ना किसी अंश के लिए खेल हो रहा है, इसमें जरूर 10-20-50 आत्मा जुड़ेंगी जो उस ईश्वर कबीर भगवान की होंगी, अन्य नहीं आएंगी यहाँ पर। यहाँ पर हीरो हीरोइन आ जाते या कोई अन्य, ये रामायण महाभारत गीता की कथा करनी है संत आ जाएंगे, दुनिया इकट्ठी हो जाती। ये कथाएं आपने खूब सुन रखी है, तुम कथाओं के सुनने गान पर कुछ लाभ नहीं होगा जब लग ये कड़वा ज्ञान नहीं सुनोगे। हमने करना क्या है, हम किस कोर्स को करें जिससे हमारा आगे आने वाला बेनिफिट बने सही। हमने कोई ज्ञान तो है नहीं, आप आंखा में इसी देखा देखी लगे हुए, जिससे हमें बेनिफिट भी नहीं हो रहा और हम भगवान में आस्था भी पूरी रखी हुई, क्योंकि हमारी वे ऑफ वर्शिप एक्यूरेट नहीं है, हमारी पूजा की विधि 3 लोग की भी ठीक हो जा। गीता के अनुसार चल कर देखो, जो हम नाम देते हैं पहले 3 लोग के देते हैं, पहले हम 3 लोग की जो सही भक्ति है वो करवाते हैं। जैसे हम अच्छे स्कूल होते हैं ना, बच्चे कमजोर से हो उनकी नौकर पर ना 5वीं क्लास की तैयारी करवाएंगे आपकी, और फिर हम आगे एडमिशन देंगे आपको। तो ये पिछली आपकी हम कमजोरी निकाल के फिर आगे की पढ़ाई पढ़ाते हैं। अगर आपने ये 3 लोग की भक्ति सही कर रखी होती तो हम सीधा नाम आपको सतलोक का दे देते, मिलता बात समझ जाती। हम पहले यहाँ की सुचारू भक्ति कराते हैं जो इन शास्त्रों में लिखी हुई है, जिस नाम मंत्र से पार्वती की मुक्ति हुई वो मंत्र देंगे हम आपको, जो भगवान शिव ने पार्वती को दिया था, वो चौथी मुक्ति युक्त होगी, यानी उन्हें बीए कर ली, और बीए के बाद फिर हम वो कोर्स करवाएंगे, उस कोर्स में आपको नौकरी निश्चित होगी। हमारा जो मार्ग है इसमें मुक्ति निश्चित है, इसमें मुक्ति पक्की है, इसमें दो राय नहीं है। जैसे कि स्कूल बताए, मिलिट्री स्कूल है, कि उनमें जिस दो बच्चा अपने पूरी पढ़ाई करता हुआ निकल गया उसको नौकरी पक्का है, तो हमारी इस भक्ति में कबीर साहब में मुक्ति निश्चित है, अगर हमारी मर्यादा में चलकर और ये करते रहोगे। एक समय की बात है, अगर अलिल चक्कर है मेरा जित से हम चल आए, पांचों पर परवाना मेरा बन छुटावन ढाए, जहाँ ओंकार निरंजन नाही ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही, जा करता नाही जान भगवान काया माया नहीं पंड प्राणा, पांच सत्य नौ गण नाही जोराकार दीप ना जाही, अमर करो सतलोक पठाऊ ताको बंदी छोड़ पाऊ। अब क्या कहते हैं बंदी छोड़, कि हम जहाँ पर हम ले जाएंगे वहां पर कोई न्यारी स्थिति नहीं है, वहां पर सभी हंस एक लेवल के होंगे, उनमें ऊंच नीच नहीं, ऊंच नीच जहां पर है वहां राग द्वेष है, वहां पर मान बढ़ाई है, वहां पर एक स्थिति में होंगे आप सब, वहां पर कोई मान बढ़ाई नहीं होगी। अब मैं एक को तो उठाकर यहाँ बैठा दू कुर्सी पर और बाकी नीचे बैठे, तो आप में जेलियसी पैदा होगी कि ये भाई न्यारा क्यों बैठा दिया, कि एक लेवल पर बैठे हो, एक ही लाइन में खाना खा रहे हो, तो आप बिल्कुल शांत रहोगे, अशांति नहीं हो सकती। या तो राजा आवे तो गवर्नर आ जाओ, उसने यही बैठना होगा अगर सत्संग सुनना है, तो फिर द्वेष नहीं बनता। ऐसे हम सतलोक में जाएंगे, वहां एक लेवल में होंगे, ऊंच नीच नहीं है। अरे स्वर्ग में तो बिरानमाटी हो रही जीव की, एक बड़ा देवता एक उससे छोटा देवता, वो उसके गेला कहता था नहीं, वो उसके गेला कहता, वो उसकी पत्नी ने गोली नजर तो देख रहा है, वो उसकी नहीं देख रहा है। अब प्रमाण मिल रहा है कि गौतम ऋषि की पत्नी के पास खुद चंद्र देवता चंद्रमा देवता गए और ऐसा जुल्म किया उसने, जब वहां पर भी ऐसे जुल्म हो रहे हैं तो यहाँ कौन से ये काय के सुख आप ले रहे हो। जैसी वृत्ति आपकी है ऐसी उनकी है, तो उसमें कोई अंतर नहीं हुआ, उनकी भक्ति सुचारू नहीं बनी, मान बढ़ाई वक्त साधना कर गई और वहां पर उन्हीं जुल्मों के अंदर उन्हीं विकारों में ग्रस्त हैं और फिर 16 लाख को भोगते रहे। तो हम जो मार्गदर्शन आपको कर रहे हैं उस पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष का कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमारे गुरु होने चाहिए, गुरु के बिना कोई भी साधना आपकी सफल नहीं होती। कोई भी भक्ति करो, चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश की कीजिए, लेकिन गुरु अवश्य बनाना पड़ेगा। केवल मंदिर में घंटी बजाने पर और मूर्ति पर पानी डालने पर आपकी कभी मुक्ति नहीं होगी, ना मूर्ति में भगवान ना मंदिर में ईश्वर। ईश्वर अगर मिलेगा तो संतान दो रखा होगा, संत जिसने कमाई कर रखी है और जिसका कनेक्शन वो संत का उस ईश्वर से हो चुका है, जो योग युक्त हो चुका है, उससे फिर आप कनेक्शन लोगे, उनसे नाम लोगे आपके घर में उस ईश्वरीय शक्ति का, जिस लाइन से उस संत की कनेक्शन है वो शक्ति आपके घर पर जितना वो लाभ दे सकती है आपको देगी। इसलिए गुरु ढूंढना आपने प्रथम चाहिए, और गुरु कौन होगा, केवल नाम आसरा देगा गुरु होगा तो, और भाई ये माता मसानी पनागल सुरहाग फलाना झकड़ा ये तुम पहले पूज ही रहे थे, अगर ऐसे कोई बताता है तो वो संत नहीं होगा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरो तारा, कलयुग में जीवन थोड़ा है कर ले बेग संभार, योग साधना पड़े नहीं बिरा केवल नाम आधार, एक नाम से मुक्ति होगी। गुरु ने कब तो गुरु ने किस चीज की जाप किया था, नाम का जाप किया था, प्रहलाद ने काहे का किया था, नाम का जाप किया था, और बहुत जल्दी प्राप्ति होती है नाम से, ये सभी आपके काम भी सरते हैं इस भगवान के नाम। अब मैं आपको कबीर भगवान की शक्ति का छोटा सा प्रमाण बताता हूं। भक्त राजेंद्र दौलतपुर खेड़ी हरियाणा से, इनकी लड़की जो है राजेंद्र है क्या, आ जाए एक बार, इनकी लड़की ये कुमारी मंजू इसको 11 वर्ष से तकलीफ थी, ये बीमार रहती थी। इन्होंने सब जगह इनको दिखाया था लेकिन कोई राहत नहीं मिली। आइए बेटी, मंजू भी है ना, आजा पुत्री। ये लड़की है, इसको 11 वर्ष से मिर्गी की तरह दौरे बन जाते थे और साइकिल पर स्कूल में जाती थी तो ऐसे साइकिल पर जाम हो जाती थी और नीचे गिर जाती थी, गंतों में होश में आती थी। इस बच्ची को इनके पिता ने और सभी घरवालों ने नाना जहां जहां भी किसी ने संत बताए वहां ले गए और साथ में डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर कोई राहत नहीं मिली। इन्होंने कबीर भगवान का उपदेश लिया, नाम लिया, उस नाम में ये फ्री में शक्ति होती है, इन दुखों को प्रथम निवारण करते हैं। और फिर वो ये आस्था बन गई इस परिवार की, इस दुख के निवारण होने पर अरे भक्ति होगी, ये असली रोग कटेगा वो जन्म मरण की बीमारी। ये आप देखिएगा, लीजिए भाई इनका फोटो, ये भक्त राजेंद्र सिंह पुत्र श्री अच्छा फिर भी अपना बोल के बोल सतगुरुदेव की बोल सतगुरुदेव की। ये हमारे कबीर भगवान की शक्ति है भाई। जहाँ डॉक्टर फेल, जहाँ पर सारी दवाई फेल, वो कर्म का बंद होता है। जब कर्म की मार होती है ना दवाई काम करती है, वो निष्क्रिय हो जाती है, रिएक्शन करना शुरू कर देती है। यहाँ पर परमात्मा का काम शुरू होता है, उस ईश्वर की शक्ति का काम शुरू होता है। उस परमात्मा ने कबीर भगवान ने ये सुख मुफ्त में दिया उस परिवार को। अब इस परिवार का इतना दृढ़ निश्चय होगा उस कबीर भगवान पर, अब ये भक्ति कर रहे हैं, शाम में आरती कर रहे हैं, जिनमें मंत्र करते अपना काम भी करे, इनका बेड़ा पार होगा, सतलोक चले जाएंगे। और सतगुरुदेव पट साहे
पट साहे, जैसा कि सुबह के सत्संग में आपने सुना कि पूर्ण परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान सत पुरुष है और तीन लोक के ईश्वर हैं, तीन लोक के मालिक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। वो तीन लोक कौन कौन से हैं? ये पृथ्वी मंडल, पृथ्वी लोक, इसे मृतलोक भी कहते हैं, स्वर्ग लोक और साथ में पाताल लोक। केवल इन तीन लोकों के अधीश्वर हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीन लोकों के अंदर जितने भी प्राणी हैं उनमें ये परम है, श्रेष्ठ है, परमात्मा है। परमात्मा का क्या मतलब होता है, इसका क्या तात्पर्य होता है? परम माने श्रेष्ठ, उत्तम आत्मा। तीन लोक के अंदर सबसे उत्तम आत्माएं, ये तीन आत्मा हैं, परमात्माएं हैं। इसलिए इनको इतना जिम्मेवारी का काम इनके पिता काल भगवान ने दे रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं काल भगवान, ज्योति निरंजन, और शुद्ध भाषा में उसे ब्रह्म कहते हैं। काल निरंजन 100,000 जीव प्रतिदिन खाता है, उसको श्राप लगा हुआ है। उसके लिए उसने अपने तीनों बेटों को, तीनों पुत्रों को तीन ड्यूटी दे रखी है। ब्रह्मा शरीर बनाता है, विष्णु पालता है, शिवजी संहार कर देता है। 100,000 जीव रोज मार के समाप्त करके मनुष्य शरीरधारी, और ये शंकर भगवान अपने पिता काल निरंजन के पास भेज देते हैं। यहां पर ये नादान आत्माएं अपने अज्ञानता के कारण कबीर साहब बता रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा का ज्ञान न होने से इन्हीं भगवानों पर आश्रित होकर और जन्मते और मरते रहते हैं, यहां से छुटकारा नहीं होता। आज हमारे बच्चे हैं उनमें हमारा विशेष अटूट प्रेम है और हर व्यक्ति का अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने पति में, माता और पिता में, रिश्तेदारियों में, बहन बेटियों में एक विशेष लगाव होता है। इतना लगाव होता है कि उनके बिना अगर लड़का या लड़की स्कूल से एक घंटा लेट हो जाते हैं तो हमारे तालाबेली लग जाती है, बेचैनी हो जाती है, प्रिंसिपल के पास टेलीफोन पर टेलीफोन करते हैं कि हमारे बच्चे घर नहीं पहुंचे, कारण क्या है। एक भक्त बता रहा था, कहता जी मेरा एक ही पुत्र, उसमें इतना प्रेम कि उसके बिना हमारे प्राण निकल जाए, अगर वो स्कूल से आध घंटा भी लेट हो जाता, देर हो जाती, जब वो 27 वर्ष का हो चुका, शादी की तैयारी कर रहे थे, वो लड़का एकलौता पुत्र एक्सीडेंट में मारा गया। हमने टक्कर मार मार कर सिर फोड़ दिया और बना कुछ नहीं। जिस बच्चे के लिए हम पल भी दूर नहीं रह सकते थे उस बच्चे से, आज उससे हाथ धोके और अपने बाकी हुए समय को रो रो के व्यतीत कर रहे हैं। कभी सोचा आपने अपने हृदय पर ये हाथ रख कर देखो, आपका एक ही पुत्र हो और वो ही चला जाए, लेकिन आपने के सोच रखा हमारा नहीं जाएगा। क्यों आपने के समाधान कर रखा है? आपने क्या बचाव किया अपने पुत्र का जो उसने ना कर रखा, जिसका एक ही पुत्र और वो स्वर्गवास कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ, और यही अंधेरा जो आपका हट जा, यही आपने ज्ञान हो जा, तो आप कबीर साहब के शरणों में आकर समर्पण कर देते, कर सकते हो, अन्यथा नहीं करोगे। क्योंकि आपने कबीर साहब की समर्थता से अभी आप अपरिचित हो, कबीर साहब की समर्थता का आपने पूर्ण ज्ञान नहीं है। जब आपको, जैसे हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा का ज्ञान हुआ, इन्होंने क्या क्या काम किए, जैसे भगवान कृष्ण जी ने कंस जैसे राक्षस को, जानवर जैसे पहलवान को और केसी जैसे राक्षस को, उतना जैसी राक्षसी को, और उनको खत्म कर दिया, शिशुपाल जैसे दुष्ट आत्मा का सिर काट दिया, कुब्जा का कुब ठीक कर दिया और सुदामा को धनवान बना दिया। हमने जब ये महिमा सुनी और मोरधस के पुत्र तामरधस को आरे से सिरवा कर उसको जीवित कर दिया, तो इन लीलाओं के आधार पर, इनकी ये गुण सुनकर हम इन भगवानों पर इतने आसक्त हो गए कि परमात्मा ये सब जो चाहे सो कर सकते हैं।